चैप्टर 1 मध्ययुगीय मध्यकाल शब्द भारतीय भाषाओं में नया ही है। इस देश के प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के किसी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में त्रेता द्वापर और कली नामक चार युगों की चर्चा मिलती है। ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में भी इन शब्दों का प्रयोग मिल जाता है। धार्मिक मनोवृत्ति की प्रबलता या क्षीणता ही इस प्रकार के युग विभाजन के विश्वास का आधार है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कृत या सतयुग में धर्म की पूर्ण स्थिति थी, त्रेता में 3/4 रह गई और द्वापर में आधी। कलिकाल में धर्म का प्रभाव और भी छिड़ हुआ और वह एक ही चरण पर खड़ा रह गया। अनेक विद्वानों ने महाभारत और पुराणों के अध्ययन से यह निर्णय करने का प्रयत्न किया है कि कलिकाल का आरंभ किस समय में हुआ था। हिंदू परंपरा के अनुसार कलिकाल राजा परीक्षित के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। यद्यपि हिंदू परंपरा इस काल को 5000 वर्षों से भी अधिक पूर्व से आरंभ होना बताती रही है, तथापि नई दृष्टि के पंडितों ने आर्य राजाओं की वंशावली के आधार पर सन ईस्वी के 1000 पूर्व से इस काल का आरंभ माना है। साधारणतः इस काल के बाद राजाओं का उल्लेख पुराणों में भविष्यकालिक क्रिया के प्रयोग द्वारा किया गया है। यह माना जाता है कि कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति पाप कर्मों की ओर हो जाती है और उनका आयु बल छेड़ हो जाता है, और ज्यो-ज्यो कलयुग आगे बढ़ता जाता है त्यो-त्यो मनुष्य की पापाभिमुख प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। यद्यपि कलिकाल के दोष अनेक हैं, फिर भी उसमें एक बड़ा भारी गुण है। अन्यान्य युगों में मानस पाप का भी फल मिलता है, किंतु कलयुग में मानस पाप का फल तो मिलता ही नहीं, ऊपर से मानस पुण्य का फल प्रचुर मात्रा में मिलता है। अनजान में भी यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो मुक्ति हो जाती है। अजामिल, गड़िका आदि इस प्रकार तरह तर हो गए। भाव से हो, कुभाव से हो, क्रोध से हो, घृणा से हो, उत्साह से हो, आलस्य से हो, जैसे तैसे भी भगवान का नाम ले लेने से इस युग में मंगल हो जाता है। लेकिन इस विश्वास के अनुसार कलयुग अंतिम युग है। आजकल के शिक्षित लोग जब मध्य युग या मध्यकाल शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके कहने का अभिप्राय भारतीय परंपरा के युग विभाग के अनुसार बीच में पड़ने वाले द्वापर या त्रेता युग से नहीं होता। वस्तुतः यह शब्द अंग्रेजी के मिडिल एजेस के अनुकरण पर बना लिया गया है। यूरोपीय इतिहास में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अभ्युदय के पूर्व तक के काल को मध्य युग या मध्य काल कहते हैं। 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों ने साधारणतः सन 476 ईस्वी से लेकर 1553 ईस्वी तक काल को मध्ययुग काल कहा है। हाल ही जानकारियों से यह मालूम हुआ है कि इस प्रकार के नामकरण का कोई विशेष उल्लेख योग्य कारण नहीं था। असल बात यह है कि मध्ययुग शब्द का प्रयोग काल के अर्थ में उतना नहीं होता जितना एक खास प्रकार के पतनोन्मुख और जबदी हुई मनोवृत्ति के अर्थ में होता है। मध्य युग का मनुष्य धीरे धीरे विशाल और असीम ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का भाव छोड़ता जाता है, तथा धार्मिक आचारों और स्वतः प्रमाण माने जाने वाले आप्त वाक्यों का अनुयायी होता जाता है। साधारणतः इन्हीं के बाल की खाल निकालने वाली व्याख्याओं पर अपनी समस्त बुद्धि संपत्ति खर्च कर देता है। यूरोपीय इतिहास के इसी युग में यह शास्त्रार्थ प्रबल रूप धारण करता है कि सुई के नोक पर कितने फरिश्ते खड़े हो सकते हैं। इस काल की साधना का वैशिष्ट्य। प्रत्येक युग के साधक भगवान के दो रूपों का अनुभव करते रहे हैं। एक तो उनका निर्गुण और निर्विशेष रूप है जो ज्ञान का विषय है। मनुष्य उसको ठीक ठीक अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्रिया के जितने भी साधन हैं, उनके पहुंच की सीमा निश्चित है। जो समस्त सीमाओं से परे है वह केवल अनुमान और तर्क का विषय हो सकता है। यद्यपि इसमें संदेह ही है कि बौद्धिक विवेचना के द्वारा उसका कितना अंश सचमुच ही स्पष्ट होता है। प्रत्येक युग का और प्रत्येक देश का साधक भगवान के निस्सीम और अचिंत्य गुण प्रकाश रूप की बात जानता है। कैसे जानता है यह बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो असीम और अचिंत्य है उसको अनुभव करने के लिए कुछ इसी प्रकार के साधन की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवात्मा में कुछ इसी प्रकार के धर्म विद्यमान हैं। वस्तुतः जब भक्त भगवान के असीम अचिंत्य गुण प्रकाश रूप की बात करता है तो वह ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों की बात नहीं करता, मन द्वारा चिंतित वस्तु की बात नहीं करता और बुद्धि द्वारा विवेचित पदार्थ की बात नहीं करता। वह इन सबसे भिन्न और सबसे अलग किसी ऐसे तत्व की बात करता है जिसे इसकी अंतरात्मा अनुभव करती है। वह सत्य है क्योंकि उसे भक्त सचमुच ही अनुभव करता है, लेकिन वह फिर भी ग्राह्य नहीं है। न तो वह मन बुद्धि द्वारा ग्रहणीय है और न वाणी द्वारा प्रकाश। जब कभी वह भक्त के हृदय में प्रकट होता है तभी भक्त के हृदय की समस्त सीमाओं में बंध कर सगुण निर्विशेष रूप में ही व्यक्त होता है। यही भक्त का भाव गृहित रूप है। इस प्रकार भगवान के दो रूप हैं। एक तो वह जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, विवेचना नहीं कर सकते, और दूसरा वह जो भक्त के चित्त में भाव से प्रकट होता है और उसके समस्त मन विकार के बंधन में बंधा रहता है। आधुनिक लेखक इस मनोवृत्ति के आधार पर ही इस युग सीमा का निर्धारण करता चाहता है। जब वह कहते हैं कि 5वीं से 16वीं शताब्दी तक के काल को मध्य युग कहने का कोई विशेष कारण नहीं है, तो असल में वे यह बताना चाहते हैं कि इस काल में सर्वत्र यह पतनोन्मुख और जबती हुई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। फिर भी मध्य युग का सीधा अर्थ काल ही हो सकता है और इसलिए 5वीं से 16वीं तक के समय को मध्य युग कहना बहुत कुछ रूढ़ हो गया। भारतीय इतिहास के लेखकों में से किसी ने इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया है और किसी किसी ने मनोवृत्ति परक अर्थ लेकर इस काल को 18वीं शताब्दी के अंत तक घसीटा है, क्योंकि भारतवर्ष में आधुनिक मनोवृत्ति का जन्म 18वीं शताब्दी के बाद ही होता है। इस अर्थ में प्रयोग करने वाले विद्वानों की कठिनाइयां यह है कि जिस प्रकार आधुनिक मनोवृत्ति के जन्म का निश्चय मालूम हो जाता है, उसी प्रकार मध्ययुगीन मनोवृत्ति के जन्म का भारतीय काल निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि यूरोप के देशों की तरह इस देश में भी मध्यकाल में एक जब्दी हुई मनोवृत्ति का राज्य रहा है। काव्य, नाटक, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, मूर्ति आदि जिस क्षेत्र में भी दृष्टि जाती है, सर्वत्र एक प्रकार का अधोगति का ही आभास मिलता है। इस सर्वात्रिक अधोगति का कारण इस देश की राजनीतिक स्थिति थी। कारण जो भी हो, मध्ययुग ह्रास का ही युग है। इसमें केवल एक बात में भारतवर्ष पीछे नहीं हटा, वह है भगवत भक्ति का क्षेत्र। उत्तर मध्य काल में बहुत बड़े बड़े भक्त इस देश के हर हिस्से में पैदा हुए हैं। इनमें कितने ही उच्च कोटि के विचारक तत्व ज्ञानी थे, परंतु अधिकांश निरक्षर साधकों की ही प्रधानता रही। भारतवर्ष के इन भक्तों ने निश्चित रूप से दिखा दिया है कि साक्षर होने से ही कोई भगवत भक्ति का अधिकारी नहीं हो जाता और निरक्षर होने मात्र से कोई उस महारस से वंचित भी नहीं हो जाता। भक्त की मनोवृत्ति के अनुसार कभी वह सखा रूप में, कभी प्रिय रूप में, कभी स्वामी रूप में और कभी अन्यान्य रूपों में प्रकट होता है। मध्य युग के भक्तों ने इस भाव गृहित रूप का बड़ा विशद वर्णन किया है। जो भगवान अचिंत्य है उसका कोई नाम रूप नहीं होता। ज्ञानी लोग उसको आत्मा या ब्रह्म जैसे एक ही शब्द से समझा जा सकता है, क्योंकि उनके मत से मनुष्य की जीवात्मा परम ब्रह्म से अभिन्न है। परंतु ऐसे परमात्मा का नाम भी क्या और रूप भी क्या। कुछ ऐसे ही भाव को बताने के लिए मौजी कबीर ने कहा था, उनका नाम कहन को ना ही दूजा धोखा होए, नाम रूप की अपेक्षा रखता है। जिस वस्तु का रूप नहीं होता उसका नाम भी नहीं होता। परंतु मध्ययुग के भक्तों में भगवान के नाम का महात्म्य बहुत अधिक है। मध्ययुग की समस्त धर्म साधना को नाम की साधना कहा जाता है, चाहे सगुण मार्ग के भक्त हो चाहे निर्गुण मार्ग के। नाम जप के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं। इस अपार भवसागर में एकमात्र नाम ही नौका रूप है। यद्यपि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान का वास न हो और मनुष्य का हृदय भी निस्संदेह उसका आवास है, फिर भी जब तक वह नाम और रूप के सांचे में नहीं ढल जाता, अर्थात सगुण और सविशेष रूप में नहीं प्रकट हो जाता, तब तक वह ग्राह्य भी नहीं है। इसलिए भक्तों के नाम स्मरण का स्पष्ट अर्थ है भगवान के भाव गृहित रूप का स्मरण। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि भगवान का गुण और प्रकाश अचिंतनीय है और सबके हृदय में रहता हुआ भी वह सबसे अगोचर रहता है, कम लोग ही उसके हृदय स्थित रूप को जान जाते हैं, तथापि संत लोग प्रेमांजन से विच्छुरित भक्ति रूप नयनों से सदैव उसका दर्शन करते रहते हैं। अर्थात जो अरूप होने के कारण दृष्टि का अविषय है, उसे प्रेम के अंजन से अनुरंजित करके विशिष्ट बनाकर देखा करते हैं। प्रेमांजन छिरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय अप्यवलोकयन्ति यम श्यामम सुंदरम अचिंत्य गुण प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का यह प्रेमांजन छरित रूप भक्त की अपनी विशेषता है, यह उसे सिद्धिवादियों से अलग कर देता है, योग के चमत्कारों को ही सब कुछ मानने वाले से पृथक कर देता है और शुष्क ज्ञान की कथनी कथनों वालों से भी अलग कर देता है। यह नाम और रूप की उपासना मध्यकालीन भक्तों की अपनी विशेषता है। यह बात बौद्ध और जैन साधकों में नहीं थी, नाथ और निरंजन मत के साधकों में भी नहीं थी और अन्य किसी शुष्क ज्ञानवादी संप्रदाय में भी नहीं थी, जबकि महिमा का बखान इस देश में नया नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञानाम जपम यज्ञोस्मि कहकर जप की महिमा बताई, पर साधारणतः जप मंत्र विशेष का हुआ करता है। भगवान के नाम को ही सबसे बड़ा मंत्र मानना और उसी के जप को समस्त सिद्धियों का मूल मानना इस युग की विशेषता है और इस विशेषता ने ही भगवान के भाव गृहित रूप को इतना महत्व दिया है। भगवान के सगुण रूप की उपासना के मूल में यह भाव गृहित रूप ही है। अंतर केवल इतना ही है कि भाव गृहित रूप भगवान के पूर्व निर्धारित किसी रूप को आश्रय करके होता है। इस प्रकार यद्यपि सूरदास ने कृष्ण और हित हरिवंश में भाव गृहित रूप में थोड़ा अंतर हो सकता है, परंतु वह एक ही शास्त्र समर्थित श्री कृष्ण के मधुर रूप पर आधारित है। वस्तुतः निर्गुण कहे जाने वाले रूप में भगवान की उपासना करने वाला भक्त भी भगवान के इस भाव गृहित गुण विशेष रूप को ही अपनाता है। फिर भी उसकी विशेषता यह है कि उसका भाव गृहित रूप किसी पूर्व निर्धारित और शास्त्र समर्थित आकार को आश्रय करके नहीं होता। मध्य युग में इस भाव ने अनेक विचित्र रूप में अपने को प्रकाशित किया है, इसलिए इस युग का साहित्य भक्ति के रस से अत्यंत सरस हो गया है और भगवान के भाव गृहित रूपों के वैचित्र के कारण उनके रूपों में प्रकट हुआ है। इस सरसता और वैचित्र के कारण ही इस युग का साहित्य इतना आकर्षक बना है।